मैं सलिल वर्मा आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं श्री गिरिजेश राव की एक कहानी भूख। सांझ हो गई थी। बाहर उजाला उतना ही बचा था जितना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय रह जाता है। ऑफिस के पीछे के ताल से आती गंध गढ़ू थी और कोर्ट कचहरी के चक्कर में अधूरी रह गई सड़क पर धूल चमक रही थी। अभी स्ट्रीट लाइटें नहीं जली थी। ऐसी गदबेर में 95 कलर रेड रिंग इंडेक्स वाले भीतरी भव्य कृत्रिम प्रकाश के माहौल से वो बाहर आया। उसने घड़ी पर दृष्टि डाली, ठीक 5:30 बज रहे थे। मन में फैलते हुए माहौर को भूल वो मुस्कुराया। तो सांझ ऐसी होती है? साला भीतर दिन रात का तो पता ही नहीं चलता, सांझ की क्या पूछ। बनसेमर के विशाल वृक्षों के ऊपर आसमान शांत था, लेकिन घर लौटते पंछियों की लकीरें चटचटा रही थी। धूसर थर्मोकोल की शीट को कोई चाकू से यत्र तत्र काटे जा रहा था। उसे भूख लगी थी बहुत तेज। उसने कार का इग्निशन चालू किया लेकिन हेडलाइट नहीं जलाई। माहौल को निहारता पीता रहा। आखिर में चमकती धूल को उसने नजर भर निहारा और हेडलाइट जला दी। अभी अभी एक बाइक गुजरी थी। तेज प्रकाश की सुरंग में उड़ती धूल अपार्थिव सी लगी, उड़कर सारे शीशों पर भट जाएगी। मन ही मन बुदबुदाते हुए उसने कार को पास के पैथोलॉजी सेंटर की ओर मोड़ दिया। पिछले 3 महीनों से उसे देह में डायबिटीज होने का शक हो रहा था। काहे बगाहे भूख बहुत लगने लगी थी, जबकि वजन एकदम स्थिर था। हर महीने वो टेस्ट करवा रहा था। ड्राइव करते वो सोचने लगा, भोजन से शर्करा और शर्करा से ऊर्जा, थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो तो नमकीन खून मीठा होने लगे। उसे अपने मूर्ख और जिद्दी बॉस की स्मृति हो आई। मांग और आपूर्ति, सिस्टम कुछ अधिक ही खून पीने लगा है। आश्चर्य नहीं कि ऊपर वाले के टेस्ट के अनुरूप ही अब मीठे खून वाले भी बढ़ने लगे हैं। उसे पता ही नहीं चला कब यांत्रिक सा कार पार्क किया, कब पैथोलॉजी सेंटर के काउंटर पर पहुंच गया। तंद्रा अगर कहा जा सके तो रिसेप्शनिस्ट के मधुर स्वर से टूटी, सर ये रही आपकी रिपोर्ट। उसने प्रश्नवाची नजर से उसे देखा तो बदले में चौड़ी मुस्कान मिली। यू आर फिट एंड फाइन सर, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। रुपये चुकाते वो निराश था। फिर इस कमबख्त भूख का क्या कारण हो सकता है? पास ही मॉल में मैकडॉनल्ड था, लेकिन उसने कभी भी वहां से कुछ नहीं मंगाया। उसे बर्गर बेहुदे लगते थे। आलू की टिक्की को चांपे पाव स्वाद में मिसफिट इनकॉम्पेटेबल थे, जबकि खाते समय किनारों से निकलकर बहती क्रीम जुगुप्सा जगाती थी। बहुत ही अहमकाना और बेहुदी डिश। पोटैटो फिंगर चिप्स उसे बेहुदे लगते थे। उसे आलू एकदम पसंद नहीं थे। मधुमेह के मरीज आलू नहीं खाते। उसका खून अभी भी नमकीन था, जिसे ऊपर वाले पसंद नहीं करते और खामखा सताते रहते कि कब मीठा हो और वे तर हो। उसे पता था कि घर पहुंचने पर रात 9 बजे तक एक एक कप चाय और 2 बिस्कुटों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ और मांगने पर मोटापे का ताना मिलता था, जैसा कि पिछले कई महीनों से कभी कभी करता चला आ रहा था। उसने कार झटका चिकन सेंटर की ओर मोड़ दी। चिकन सेंटर के बगल में दारूबाज जुटते थे। दारू की गर्मी मरे मुर्गे की भुनी टांग सहलाकर शांत होती थी। उसने केवल सुन रखा था, दारू कभी नहीं पी थी। दुकान पर पहुंचने तक स्ट्रीट लाइटें जल चुकी थी। सड़क पर फैले पीलिया से घबराकर सांझ भाग गई थी और रंडी रात ने देह चमकाना शुरू कर दिया था। सरदार ने उसका बढ़कर स्वागत किया। ओहो आओ जी आओ, इस गली बहुत दिन बाद, सब ठीक तो है? ऐ लौंडे, भाई की पसंद वाली मेज साफ कर दे। तंदूर लगा दूं? फुल मसाले वाली, घी या मक्खन? उसने आंखों आंखों हाथ हिला इशारा कर दिया। दोनों ओर की समझ पक्की हो गई। घी वाला फुल रोस्टेड पात गोभी के ढेर सारे लच्छों के साथ। मेज साफ करने की बात पर वो मुस्कुराया। सरदार को उसकी पसंद पता थी। किनारे की मेज पर वो उस ओर बैठता था जहां माइका सफेद थी। वो मेज नाले से लगी थी, जिससे रह कर आती गंध और मच्छरों के कारण वो दुकान की सबसे कम पसंदीदा जगह थी। उसे लगता कि सरदार उसे बस इसीलिए पसंद करता है कि उस मेज का उपयोग हो जाता है। उस जगह की खासियत समझने के लिए थोड़ा विकृत होना अनिवार्य था। वहां से सड़क एकदम ताजी सी दिखती, काली ड्रेस से झांकती पिंडलियों की तरह उत्तेजक, मोहक, बुलाती सी। नाले की गंध, बनते हुए आमलेटों की गंध और भुने जाते मुर्गे का एरोमा दारू की उड़ती महक के साथ मिलकर वो फिजा पैदा करते जिसके बारे में उसे यकीन था कि स्वर्ग का माहौल वैसा ही होता होगा जिसमें ऊपर वाले खून पीते जीते हैं। वो बैठ गया। भूख मरोड़ रही थी। जैसा कि होता था वो एकदम चुप नहीं चुप था। वो तेज भूख लगने पर ऐसा ही हो जाता था। उसे लगता था कि ऐसे में अगर बोला तो सिवा गालियों के कुछ नहीं निकलने वाला। उसे गालियों की निरर्थकता के बारे में कोई संदेह नहीं था, इसीलिए वो चुप रहता था। उसे एरोमा से पता चला कि वे अंडे ठीक नहीं थे जिनसे ऑमलेट बन रहा था। उसने कंधे उचकाए और मन में बड़बड़ाया, मुझे क्या खाना थोड़ी है। दारू खाने में ऐसों की भीड़ थी जो रोज कमाते हैं, रोज उड़ाते हैं, रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। पेटी ठुकेदारों के सुपरवाइजर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कबाड़ी, घर घर मार्केटिंग करने वाले जवान, घर वालों को चूतिया बनाती संघर्षशील प्रतिभाएं। शाम की जेंट्री ऐसी ही होती थी। इस जेंट्री को वो बहुत पास से जानता था। इन्हें डायबिटीज कभी नहीं होता, खून खारा ही होता है। लेकिन जाने इनके खारेपन में कौन सी ऐसी बात होती है कि इन्हें सब चूसते हैं, और ये खुद भी बहुत बड़े खूनखोर होते हैं। इनका इश्क अनिवार्यतः अवैध संबंध होता है, और कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जिसमें अखबारों को ये गर्मा गर्म किस्से न मुहैया कराते हैं। फिर भी वो उन्हें अपने से बेहतर मानता था। उसे वहाँ उस समय बहुत अच्छा लगता कि दुनिया में अच्छे लोग हैं जो उससे बेहतर भी हैं। ताज़े भुने मुर्गे से आती भाप और एरोमा से उसकी तंद्रा टूटी। प्लेट में चारों ओर पात गोभी के लच्छे करीने से रखे हुए थे। लच्छों के बीच में मुर्गा कटा फटा चिरा लगा सजा हुआ था, जिसके मरे भुने मांस की लालछोई सफ़ेद लुभावनी थी। मुर्गों को डायबिटीज़ होता है क्या? वे इतनी उम्र जी पाते हैं क्या? इनका खून कोई पीता है क्या? भूख की मरोड़ अब आमलीय हो चली थी और खटास जीभ तक पहुंच रही थी। उसने पात गोभी के कुछ लच्छे मुंह में डाले और चुगलाने लगा। सरदार आ पहुंचा था। ओए बादशाहो, बधिया बना के नहीं? वो मन ही मन भुनभुनाया, हाँ जगलर बधिया है। प्रकट में वो पहली बार बोला, तुसी फ्री हो? हो हम कब फ्री की गल, फ्री हो तो पास बैठो और अपने बनाए का मजा लो। हैरान सरदार को झिझका, लौंडे संभाल ले के? उसने कुछ को गालियां देते हुए चेताया और बोला, यहाँ नहीं, बहुत गंद है, ओ उधर चलते हैं। बैठना है तो यहीं बैठो सरदार जी, वरना। सरदार बैठ गया और उसके इशारे पर मुर्गे की एक टांग उठाकर खाना शुरू कर दिया। ओए ये जगह तो बहुत बिंदास है, मान गए तुम्हारी पसंद को। उसकी नज़र सामने से गुजरती लौंडिया पर थी। वो भुनभुनाया, साला बिन पिए ही बकवास करने लगा। उसे दारू की दुकान की बेंच पर एक गिलास दिखा जिसमें से कड़वे तेल जैसी पीली दारू झांक रही थी। घी, मक्खन, तेल, मीठा, नमकीन, अंडे, सब परहेज। जिंदगी परहेज ही होती जा रही है, और खून है कि मीठा होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे किसी ने खींचा था वो उठकर गिलास ले आया। बस दारू सी बची है जिंदगी में। ओए ये क्या दारू है जी? तेरी तो। उसने मुर्गे का ब्रेस्ट पीस उलट दिया। उसके दिल, जिगर सब भुन चुके थे, जिनमें क्या मीठा क्या नमकीन, खून का एक कतरा तक नहीं बचा था। ब्रेस्ट, ब्रा, ब्रेसिका, उसे सरसों का लैटिन नाम याद आया। पिंडलियां, जिंदा मांस, मुर्गा, मुर्दा मांस, सब जगह, सब खूनखोर मांस भोजी। पोल की पीली लाइट में ब्रेस्ट से उठती भाप अभी भी दिख रही थी। धूल है ये सब, कुछ और नहीं। उसने सरसों के तेल नहीं, दारू को ब्रेस्ट पर उंडेल दिया जैसे पेट में मरोड़ते अम्ल पर चूने की धार पड़ी हो। सब बैठता चला गया। भूख लापता हो गई, मुर्गा ठंडा हो गया। उसने 200 के नोट सरदार की जेब में ठूसे और चल दिया। सरदार जी खा लेना, सुना है दारू से ठंडा किए गोश्त की तासीर ही अलग होती है। पीछे से आती मुँह ठूसू हंसी से वो समझ गया कि मुर्गा पेट की ओर जाने को चबाया जा रहा है। आज देर कर दी? पूछती पत्नी को उसने उत्तर दिया, इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल प्रमोशन हो जाएगा। इस महीने की रिपोर्ट मिल गई, मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे फिजूल के खान पान परहेजों में न जकड़ो। हाँ, आज रात जश्न करें। दीवान में रखी वियना वाली नवी सिंफनी की सीडी निकाल लो। जार से एक मुट्ठी चीनी निकाल उसने मुंह में डाल लिया। मुंह में मिठास भरती चली गई। वो दूसरे लोक में था जहां भूख जैसा कुछ नहीं होता। रात का जश्न, ले जाई पत्नी हैरान सी उसे देखती रह गई।